इस्लाम तलवार की जोर पे फैला, ये कुछ लोग इसको एक क्वेश्चन मार्क बनाते हैं या दी और कहते हैं कि इस पे तो इसके पेश नज़र जो कुरान में भी जो गजबा और जो जंगों का तस्करा है और जो सियासी तौर पे बाद में भी रोनमा हुई है, तो इस बारे में आप क्या इसको किस तरह से इस
ठीक
दलील
है।
दे के समझाया जा सकता है?
मुसलमानों की तारीख के तीन हिस्से हैं, आप जरा तीनों को देखिए कि उसमें से कहाँ ये बात सादिक आती है और कहाँ ये सादिक नहीं आती। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में कोई तलवार नहीं उठाई। जिन लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया, बड़ी मुसीबतें उठा कर कबूल की। ये आपको मालूम है कि सबसे पहले ईमान लाने वालों में पिसे हुए तबकों के लोग थे, जेरदस्त लोग थे, गुलाम थे, यानी उनके लिए क्या तरगीब हो सकती थी। बड़ी मुसीबतें तकलीफें उठाकर वो ये शहादत देते थे कि अल्लाह वहदहू ला शरीक। सोसाइटी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, उनके मालिक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुश्किलात पेश आई। आपके इल्म में है कि सहाबा किराम में से बहुत से लोगों को दो मरतबा हबशा की तरफ हिजरत करनी पड़ी, यानी अपना वतन छोड़ के। उस जमाने में इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी थोड़ी तादाद थी उन लोगों की जो ईमान लाए, लेकिन 230-35 के करीब घराने हैं जो हिजरत तक ईमान ला चुके थे। तो इनमें से किस मौके के ऊपर इस्लाम ने तलवार उठाई? कुछ भी नहीं हो। अच्छा, अब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ ले आए। मदीना में तशरीफ लाने के बाद आपके इल्म में है कि बदर में कुरैश हमलावर हुए, उहद में कुरैश हमलावर हुए, अहज़ाब में कुरैश हमलावर हुए, हुदैबिया के मौके पर भी कुरैश ने रास्ता रोकने की कोशिश की, कोई हमला तो नहीं किया गया ना। तो ये जिस जो जमाना है जिसको कहा जाता है कि यद खुलून फी दीन अल्लाह अफवाजा, ये तो पेश ही उस दौरान में आया सारा का सारा। यानी पहले मरहले में भी कहीं आपको तलवार से लोग मुसलमान होते नजर नहीं आते, दूसरे मरहले में भी तलवार से मुसलमान होते नजर नहीं आ रहे। इनमें से कौन सी जगह है जहां तलवार उठाई गई? अब मक्का फतह हो गया, इस्लाम का गलबा कायम हो गया। जाहिर है कि जब किसी तहजीब का, किसी नजरिए का गलबा कायम हो जाता है तो उसके असरात फैलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर जब मुसलमान बाहर निकले और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतों को उलट दिया और उसके नतीजे में लोगों के लिए एक आज़ादी की फ़िज़ा पैदा हो गई कि वो अपना फैसला खुद कर सकें, तो उसमें भी बड़े पैमाने पर लोग मुसलमान हुए। कोई शक नहीं कि उसमें तलवार भी अपना किरदार अदा कर रही थी, सियासी गलबा भी अपना किरदार अदा कर रहा था, लेकिन ये पहला दौर नहीं है, ये दूसरा दौर है। अच्छा, फिर इसके बाद वहाँ से मुसलमान निकले और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में फैलते चले गए, मसलन मलेशिया, मसलन इंडोनेशिया, कदीम ज़माने के जावा, स्मार्ट्रा, ब्रुनाई, उनमें कौन सा लश्कर है जो हमलावर हुआ है? तो इसलिए ये बात अलल इतलाक ठीक नहीं है। तलवार ने भी अपना काम किया है, उसने एक सियासी गलबा कायम कर दिया, एक फ़ज़ा पैदा कर दी, उसके नतीजे में कदीम इस्तेदाद खत्म हो गया, सल्तनतें उलट गईं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक सज़ा नाफिज की गई पैगंबर का इनकार करने के नतीजे में, और उसका भी एक नतीजा ये निकला कि बहुत से लोग उसमें मुसलमान हुए। लेकिन जिस तरह से ये मामला हुआ है, इसी तरह से इस्लाम की जो अंदरूनी ताकत है या उसका अपना इस्तदलाल है या वो जिस तरीके से इंसानी फितरत की आवाज़ बनता है, वो भी फैलता चला गया है। तो ये चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखने का जो तरीका हमारे यहाँ अख्तियार किया जाता है, ये ठीक नहीं है। इल्मी तरीका यह है कि आप पूरी की पूरी सूरत हाल को जैसे कि वो है वो पेश कर दें। तो अगर मैं इसको बयान करूं तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि तलवार ने भी अपना एक किरदार अदा किया है हैर के इस फैलाव में, लेकिन ना ही आपको इब्तदाई दौर में नज़र आती है, ना ही आपको इख्तितामी दौर में नज़र आती है। 1415 में मुसलमान जावा, स्मार्टरा और दूसरे इलाकों में गए हैं, वहाँ खालिस दावत की बुनियाद पर अरब ताजरों के जरिए से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसलिए ये बाल अलल इतलाक सही नहीं
है। लेकिन आप जावेद साहब, इसकी ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। आप ये फरमा रहे हैं कि तलवार ने भी अपना किरदार अदा किया, इसका ये मतलब है कि सियासी तौर पर मुसलमानों ने एक इलाके पर गलबा हासिल कर लिया, या उन्होंने फर्दन फर्दन तलवार की जोर पर जबरन इस्लाम कबूल करवाया? इसको वाजे कर दीजिए।
नहीं, ये तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये कि जब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देने के नतीजे में सजा के नफाज का ऐलान किया गया, तो आपको मालूम है ना कि जिन लोगों को सजा दी गई वो दो तरह की सजा थी। मुशरिकीन के लिए ये ऐलान कर दिया गया कि उनके लिए मौत की सजा है, तो मारे गए लोग। अब जाहिर है कि जब आप कहेंगे कि जो लोग मुशरिकीन हैं और उन्होंने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, उनके लिए मौत की सजा है, अगर वो इससे बचना चाहते हैं तो ईमान कबूल करें, تو ایک زاویے سے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے ایمان قبول کرنے کے معاملے میں ایک جبر داخل ہو گیا ہے. اچھا یہی صورتحال جو ہے وہ اہل کتاب کے معاملے میں ہے, ان سے بھی یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ اب آپ لڑیں یہاں تک کہ حتیٰ یوت الجزیہ تن یدن وہم ساگرون. اس لیے میں نے عرض کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے منکرین کے لیے یہ سزا کا نفاذ کیا گیا وہ بھی اس کا باعث بنی کہ بہت سے لوگ ایمان قبول کر کے دین کے دائرے میں داخل ہو گئے, وہ بھی اس کا باعث بنی. لیکن یہ کہ اسلام سارا کا سارا تلوار کے دور سے پھیلا ہے یہ بات علی الاطلاق ٹھیک نہیں ہے. دونوں پہلو سائڈ بائی سائڈ موجود ہیں اور ان کو پوری دیانتداری کے ساتھ ایسے ہی رکھنا چاہیے سامنے.
ٹھیک ہے, آپ کا سوال سر.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ان حرمین سے اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ اگر مکہ کو اللہ تعالیٰ خود بلد الامین کہتا ہے تو مکہ کو جب آپ رینٹ سیک کریں گے یا وہاں پر کوئی ایسی اٹراسٹی کریں گے, اس طرح نبی کریم نے اپنی حیات طیبہ کے آخر میں مدینہ کو حرم قرار دیا, تو مدینہ پر حملہ کرنا وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے ہونا اور پھر وہاں جو کچھ ہے جس کی جو تقریباً ایسی تفصیلات ہیں جن پہ بہت سا اتفاق ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے؟
نہیں, ہمارے اپنے زمانے میں آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے مکہ پہ قبضہ کر لیا بلکہ حرم پہ قبضہ کر لیا اور آپ فخر سے کہتے ہیں کہ پھر ان سب لوگوں کو مار پیٹ کے نکالنا پڑا وہاں سے. اس لیے معاملات کو اس سے بلند ہو کے دیکھنا چاہیے. یعنی اگر تو کسی نے ناجائز حملہ کیا ہے تو اب جائز تھا ناجائز تھا, ذمہ دار تھا کوئی آدمی یا نہیں ذمہ دار تھا,
کرنا پڑے گا.
وہاں کوئی ہنگامہ پھر واقع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے گئے تھے یا لوگوں کو محض ڈرانے دھمکانے کے لیے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کسی واقعے کے اتنے پہلو ہوتے ہیں کہ ان میں آسانی کے ساتھ آپ کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتے, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کے جو پہلو بھی ہمارے سامنے ہوں گے ظاہر ہے وہ پہلو کیسے سامنے آئے ہیں, یعنی کیا آپ نے کوئی ویڈیو بنا لی تھی وہاں پہ, کیا کوئی تصویر سامنے آ گئی ہے, کیا لوگوں کے زندہ لوگوں نے اٹھ کے بیانات دے دیے ہیں, کیا قبرستان میں گئے تھے اور وہاں سے جا کے ساری تحقیقات مکمل
کی, ویڈیو بنانے کے بعد بھی کئی کئی انٹرپریٹیشن
موجود ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے نہیں ہے, لوگ باتیں بیان کر رہے ہیں اور کس زمانے کی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ جہاں ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پہنچانے کے لیے تین تین مہینے لگ جاتے تھے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ذمہ دار آدمی یہ کر سکتا ہے کہ اس طرح کے تاریخی معاملات کی تفصیلات کو عقیدہ بنائے یا ان کی بنیاد پر کنڈمنیشن کرے. ان کی بنیاد پر یہ کہنا چاہیے کہ جو مواد ہمارے سامنے ہے اس میں ہمارے خیال میں یہاں زیادتی ہوئی, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں.